नमस्कार दोस्तों, मोबाइल एंड चप्पल दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है पक्ष विपक्ष में उद्योगपतियों का मुनाफा, बढ़ती दुनिया की गरीबी। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 20-30 सालों में दुनिया के 5 बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति में दुगनी से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। जिस समय इन अमीरों की दौलत में इजाफा हो रहा है, ठीक उसी समय 5 मिलियन लोग गरीब से और ज़्यादा गरीब हो रहे थे। इससे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि हाल ही में दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शीर्ष 5 उद्योगपतियों ने एक नई रणनीति पर चर्चा की और गठबंधन किया है। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जुड़े हुए। सर, मोबाइल में तो स्वागत सर आपका।
जी जी सर, ये बहुत नमस्कार और आपका एक मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद कि आपने एक ऐसी विषय वस्तु को उठाया जो हमारी आर्थिक विषमताओं को दर्शाता है, क्योंकि विश्व स्तर पे कुछ देश जो है आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत भी अब विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि उसकी भी 5 ट्रिलियन के लगभग अब विश्व व्यवस्था में 5वां स्थान हो गया। 5 ट्रिलियन के अरब मतलब के करीब उसकी अर्थव्यवस्था निर्मित होती जा रही है। तो
जी
ये जो विषय है और आपने जिस तरह से दावोस की बात की, इन सब विषयों पे मुझे बात करने के लिए मंच दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी
जी
बोलिए।
सर, उद्योगपतियों का मुनाफा, वही बढ़ती दुनिया की गरीबी, इसको कैसे देख रहे सर?
देखिए साहब, इसमें विकसित राष्ट्रों की बात करें तो वहां तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो भारत जैसे जो विकासशील राष्ट्र, बांग्लादेश जैसे जो विकासशील राष्ट्र, जहाँ पे मानव संसाधन बहुत अधिक उपलब्ध है। मतलब अपन भारत की बात करें तो 1 अरब 43 करोड़ यहाँ की आबादी है, लेकिन यहाँ पे आप एक विडंबना देखिए कि 80 से 84 करोड़ लोग आज भी सरकार के द्वारा दिए गए अनाज पे निर्भर है। और ये निर्भरता क्यों भाई, सरकार को अनाज देने के बजाय, किसान को सुविधा देने के बजाय उसको सिंचाई सुविधा दीजिए, उसको बीज खाद पैदा कर दीजिए। आप उसको 1200 रुपये में DAP की बोरी देते हो और उसके माल की कीमत देखिए कितना कम रहता है। अभी देखिए, हम लोग संसर इलाके के हैं, हमारे यहाँ जो कपास बहुत अधिक होता है, बड़ी फैक्ट्रिया है, पर किसान को उस लागत की तुलना में ये इनकम नहीं हो रही। तो ऐसी इसमें जो हमारा जो प्राइमरी जो आधार है कृषि, क्योंकि जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में जो हमारी पूरी व्यवस्था है बटी है, तो उसमें देखिए सेवा का क्षेत्र बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, अभी खेती को देखिए तो GDP में केवल खेती का 14% योगदान है। अब आप देखिए, प्रतिदिन 2000 किसान खेती करना छोड़ रहे हैं, तो भारत जहाँ कृषि अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ है, वो रीढ़ कमजोर होती जा रही है। हमारा 55% लोग खेती कर रहे हैं और GDP में योगदान देखिए मात्र 14% है। ऐसी इसमें क्या हो रहा है, सेवा का क्षेत्र बढ़ रहा है, तो उसमें सेवा के क्षेत्र में वो लोग ऊपर आ रहे हैं जो उद्योगपति है। भारत सरकार हमको आज भी 84 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज बांट रही है। लाडली लक्ष्मी बहना के अंतर्गत 1000 रुपये दे रही, बताइए 1000 में क्या होता है साहब? उस लाडली बहना को 1000 रुपये देने के बजाय यदि वो उसको उद्योग दे, स्वरोजगार दे, तो हो सकता है वो 1000 से ज्यादा कमाए तो हमारी इनकम बढ़ेगी। पर गवर्नमेंट पता नहीं कि उनकी नीति क्या है समझ में आया, हम लोग केवल दिखावे की राजनीति पे जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अर्थव्यवस्था में जो उछाल दिख रहा है उद्योगपतियों का, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे सरकार की रणनीति या विश्व स्तर की रणनीति का एक बहुत बड़ा योगदान है। जी
जी सर, सर क्या कारण देखते हैं कि एक और हम असमानता और उद्योगपतियों का मुनाफा, वही मजदूर जैसे वर्ग भी इस देश की इकोनॉमी में अपना योगदान देते हैं, उसके बावजूद भी एक और गरीब होता जा रहा है और उद्योगपति मुनाफा लेकर अमीर और अमीर होते जा रहे हैं? सर
देखिए, मैंने शुरू में कहा ना कि भारत की जो आबादी 1 अरब 43 करोड़ है, उसमें साहब जैसे बहुत सारे लोगों के पास धन है हमारे यहाँ पे, लेकिन धन का मतलब नियोजन कैसा होना चाहिए उसकी जानकारी यहाँ के लोगों को नहीं है। आप बिल गेट्स की बात करो, वॉरेन बफेट्स की बात करो, ये लोग इन्वेस्टर है, ये मतलब मार्केट में पैसा लगाते हैं और हम लोग बैंक में जाके FD बनाते हैं। देखिए, अब FD बनाने में हमको ब्याज कितना मिल रहा है और ये लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, रियल इस्टेट में लगाते हैं। और ये जो आर्थिक असमानता है भारत में, देखिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आय जो है सिर्फ 20 रुपया है और वही मुकेश अंबानी है, अडानी जी है, इन लोग का सेकेंड और मिनट का हिसाब देखे तो अरबों खरबों में जा रहा है। तो ये जो आर्थिक विषमता है ये भारत को पीछे की ओर ले जाएगी। क्यों? क्योंकि ये उद्योगपति मानव संसाधन का उपयोग करके अपने उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जो आर्थिक असमानता है वो दूर नहीं हो रही सर। और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। अभी देखिए म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, हाँ पीपीएफ अकाउंट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सेबी जो है इस तरह की व्यवस्था कराती है कि हर व्यक्ति को इसकी जानकारी हो जाए। हमको एलआईसी के बारे में बताया जाता है, अब एलआईसी में हम लोग हर साल 1.5 लाख 70 हजार 2 लाख रुपए जमा करते हैं, एक एक साल और वो करते हैं हम कब तक, 21 साल 25 साल। तो आप बताइए यदि वो मैं 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाऊं तो मैं उसका 10 लाख कमा सकता हूँ। हमारे को ये जानकारी नहीं बताई जाती साहब। और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है उद्योग जो स्व सहायता वाला उद्योग है उसको ऊंचा उठाना चाहिए। हालांकि अभी मोदी जी मंदिर का निर्माण करके एक तरह का स्व उद्योग को निर्माण की ओर अग्रसर कर रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले तिरुपति गया था तो वहाँ का पूरा टूरिस्ट पे डिपेंड है, वहाँ की व्यवस्था राजस्थान में देखा हूँ तो वहाँ पे भी टूरिस्ट पे डिपेंड है। तो इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए, गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारे एमपी में जो पर्यटन स्थल है वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं होती, तो ऐसे में वहाँ के लोकल आदमी को रोजगार कहाँ से मिलेगा, उसका उद्योग कैसा उत्पन्न होगा। तो ये एक समझ पैदा करने की आवश्यकता है। जी बोलिए।
जी सर, सर इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में असमानता, आर्थिक असमानता कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं सर?
देखिए मैंने आपको एक इंटरव्यू में पहले बताया था कि भारत और इंडिया, हालांकि अब इंडिया का नाम भारत हो गया, आप भारत में देखिए 73% गरीब मतलब ग्रामीण लोग रहते हैं और इंडिया में केवल 27% या 28% लोग रहते हैं। अभी भी मैं जिस क्षेत्र का हूँ, मैं जहाँ पिपला नारायणवार में देखता हूँ कि जो किसान जो पहले खेती करता था आज भी वो खेती कर रहा है, उसकी स्थिति आज भी वैसी है। और यहाँ के जो कुछ लोग हैं वो बहुत उद्योग की ओर अग्रसर हो रहे थे, उसके पीछे का कारण वही नियोजन की है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कमी है, स्टार्टअप की उनको जानकारी नहीं है, रिस्क नहीं उठाना चाहते, पैसे का अभाव है। बैंक में जाओ तो कोई उद्योग शुरुआत करने के लिए तो कहते कि गारंटर लाओ, अरे भाई साहब मुझे ये बताओ हमारे पास पैसा होते तो हम तुम्हारे पास गारंटर कहे के लिए लाते। तो गवर्नमेंट की कुछ रणनीति ऐसी है कि जिसकी वजह से सामान्य व्यक्ति उद्योग की तरफ अग्रसर नहीं हो रहा है, ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। और जो जिन लोगों के पास आर्थिक नियोजन अच्छा है, चाहे वो बड़ी बड़ी उद्योगपति है, गवर्नमेंट उनको कर्जा उनका लोन माफ कर रहे। और एक किसान यदि 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख कर्जा उठाता है तो उसके घर में कुर्की भेजते, अब बताइए कुर्की भेजेंगे तो किसान कैसे अग्रसर होगा। और विजय माल्य यहाँ से पैसा लेके भाग जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, यहाँ कोई आदमी जेब काट ले उसको जेल करवाते, ये विषमता है ना साहब। अब आप खुद देखिए, एक व्यक्ति के पास पैसा रहेगा और एक के पास कुछ नहीं रहेगा तो डकैती करेगा, लूट करेगा, गोलियों से टपकाएगा वो, तो ये विषमताओं का रिजल्ट आपको मिलेगा।
जी जी सर, जहां आपने हाल ही में अभी कुछ ही क्षणों पहले कहा है कि सर देश की 80 करोड़ आबादी को राशन सरकार उपलब्ध कराती है, तो क्या सर जो आर्थिक असमानता हम देख रहे हैं इसमें कुछ परिवर्तन या आने वाले दिनों में परिवर्तन, या फिर ये दावोस में हुई बैठक और आई रिपोर्ट के बाद में इस तरीके के जो क्रियाकलाप हो रहे हैं इसमें एक आम नागरिक क्या सोचता है अपने आप में कि गरीब से अति गरीब होते जा रहा है?
देखिए गरीब गरीब नहीं हो रहा साहब, हमारी जो रणनीतियां है वो उसको गरीब कर रही है। आप उसको 35 किलो अनाज दे रहे हैं अटल पेंशन योजना के तहत, उसको बीमा दे रहे हो, सारी सुविधा उपलब्ध करा, काम क्यों करेगा? अभी देखिए मेरे जिस इलाके में हूँ पिपला और संसर के, वहाँ के कई लोगों का कपास अभी भी नहीं निकला, क्यों? क्योंकि उसको मजदूर नहीं मिलता। मनरेगा कार्यक्रम का इतना इफेक्ट हुआ है हमारी व्यवस्था पे कि हमने तो सोचा था कि मनरेगा ग्रामीण लोगों को रोजगार देगा, पर उसका अर्थव्यवस्था पे कृषि पे खास करके इतना बड़ा योगदान हो गया कि लोगों को मजदूर नहीं मिलते। अभी भी कपास, अभी मैं तिरुपति वाले साइड विजयवाड़ा उधर गया हूँ जहाँ महाराष्ट्र में सबसे मतलब महाराष्ट्र से लगे हुए क्षेत्र, वहाँ देखा कपास अभी भी जैसा का वैसा ही निकाला ही नहीं किसानों ने, क्योंकि उनको मजदूर नहीं मिलता। अब बताइए ऐसे इसमें कैसे नियोजन होगा फिर? और ये विशेषता है, बस मैंने बताया ना कि हर दिन 2000 किसान खेती करना छोड़ रहे
जी।
और जिसके पास 10 एकड़ 15 एकड़ खेत है वो बेचारा जाके छोटी छोटी दुकानों में नौकरी कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे विदेशों में होता है कि वहाँ के छोटे कर्मचारी मतलब छोटे उद्योगपति को जिस तरह की सरकार ऊपर उठाती है वो होना चाहिए। दूसरा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है निःशुल्क वाला, ये बंद करवा दीजिए आप, उसको उस तरह की सुविधाएं दे कि वो अपना उद्योग उठाए, उसको मदद करो आप। वहाँ आप 84 पिछले कितने सालों से आप उनको फ्री में अनाज खिला रहे, 35 किलो आप अनाज दे रहे हो और लोन माफ कर रहे हो, बिजली बिल माफ कर रहे हो, तो बताइए फिर आपकी स्टार्टअप कैसे क्रिएट होगी, कैसे उद्योग बढ़ेगा? क्योंकि हमको आदत पड़ गई ना फ्री में खाने की। जापान को देखिए, जब 1945 में बम गिराया था, उसके बाद उसके अर्थव्यवस्था देखिए, आज वहाँ के व्यक्ति का औसत जो है उम्र जो है 80 से ऊपर है, और हमारे यहाँ मैंने पढ़ा था कि 29 साल है। इसका मतलब है कि हमारी कर्मशीलता में अंतर आ रहा है। जब कर्मशीलता नहीं बढ़ेगी तो हमारी सोच नहीं बढ़ेगी, तो हमारा उद्योग कहाँ से बढ़ेगा।
जी बोलिए। थे एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर उद्योगपतियों का मुनाफा, बढ़ती दुनिया में गरीबी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी के साथ साझा की। सर मोबाइल वाणी को समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी सर, धन्यवाद, नमस्कार सर।
जी सर, ऐसे कार्यक्रम सुनने के लिए सुनते रहे मोबाइल वाणी। नमस्कार।